क्या था, रूह वही रूह नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं रामचरितमानस के अंश।
श्री रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने देववाणी संस्कृत में रचित मंगलाचरण से किया है। इन छंदों में शंकर तथा श्री राम सहित अन्य देवताओं की स्तुति की गई है। प्रथम सोपान बालकांड के आरंभ में सरस्वती, गणेश, पार्वती, शंकर, कवीश्वर वाल्मीकि तथा हनुमान की वंदना की गई है। द्वितीय सोपान अर्थात अयोध्या कांड गुरु रूप श्री शंकर तथा नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री राम की स्तुति से आरंभ होता है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीय का बालचंद्र, कंठ में हलाहल विष तथा वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं। भस्म से विभूषित शरीर, देवताओं में श्रेष्ठ संहारकर्ता तथा भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापी कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले ऐसे देवाधिदेव महादेव से गोस्वामी तुलसीदास अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भक्त कवि की कामना है कि रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र, जिनका मुखमंडल ना तो राज्याभिषेक से प्रसन्न हुआ और ना ही जो वनवास के दुख से मलिन हुआ, सदा मंगलदायी हों। नीले कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग हैं जिनके, सीता जी जिनके वाम भाग में अवस्थित हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण और धनुष शोभित हैं, उन रघुवंश नाथ का तुलसीदास नमन करते हैं।
Hallelujah.
रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दें। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।
जो कछु कहिए तोर सब आसु समीप भय सित केसा मन उजरठ बनु अस उपदेसा नृप जुब राजु राम कहु देव जीवन जनम लाभ बिन लेव यह विचारु दिन सुअवसरु पाई प्रेम पुलकित न मुदित मन गुरहि सुनायउ जाई विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे हरि मित्र उदासी सब ही राम प्रिय जे ही विधि मोही प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही विप्र सहित परिवार गोसाई करहि क्षोभ सब रोरिहि नाई जे गुर चरण रेणु सिर जनु सकल विभव बस करही मोहि समय अनुभयउ न दूजे सब पायउ रज पावनि पूजे अब अभिलाष एक मन मोरे पूजी नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु कहेउ नरेश रजाय सुदेहु
एक दिन अवध नरेश महाराज दशरथ दर्पण में अपनी छवि देखते हुए राजमुकुट को व्यवस्थित कर रहे थे कि कनपटी पर के बाल सफेद दिखे मानो बुढ़ापा ये संदेश दे रहा हो कि हे राजन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद देकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक करने का समय आ गया है। महाराज ने अपनी अभिलाषा कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को जा सुनाई। उनकी मंगल कामना तथा आनंददायी वाणी सुनकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक प्रबंध कीजिए। श्री राम के अभिषेक के लिए शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। ये संवाद सुनकर मंत्री सुमंत्र तथा राजप्रासाद के सेवकगण ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे को जल मिल गया हो। महाराज का आदेश पाकर मुनिवर वशिष्ठ द्वारा बताई गई सामग्री का प्रबंध किया गया। सभी तीर्थों के जल, औषधि, मूल, फल फूल, चंवर, मृगछाला, नाना प्रकार के वस्त्र, मणियां तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की जाने लगी।
Thank you. राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार फल अनुगामी महिपमनि मन अभिलाषु तुम्हार। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी बोले उराव रहसी मृदु बानी नाथ राम करियहि जुबराजु कहिय कृपा करी करिय समाज मोहि अछत यहु होई उछाहु लहि लोग सब लोचन लाहु प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही यह लाल सा एक मन माही कुनि न सोच तनु रहौ कि जाओ जेहिन होइ पाछे पछिता सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए मंगल मोद मूल मन भाए सुनु नृप जासु विमुख पछिताही जासु भजन बिनु जरनी न जाही भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बेगी बिलंबुन करिय निप साजिय सबुई समाज सुदिन सुमंगलु तब ही जब राम हो ही जुबराजु। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए कही जय जीव शीस तिन्ह नाए धूप सुमंगल बचन सुनाए जो पाचहि मत लागनी का करहु हरषि राम ही टीका मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी अभिमत बिरव परे उजनु पानी बिनती सचिव करहि कर जोरी जियहु जगत पति बरिस करो जग मंगल भल काजु बिचारा बेगिय नाथ न लाई बारा नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाखा बढ़त बोड जनु लही सुसाखा। कहे उभूप मुनि राज कर जोई जोई आय सुहो राम राज अभिषेक हित बेग करहु सोई सो ¶¶ हर्ष मुनीस कहे मृदु बानी आनहु सकल सुति रथ पानी औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गनि मंगल नाना चामर चरम बसन बहु भांति रोम पाट पट अगणित जाति मणिगण मंगल वस्तु अनेका जो जग जोगु भूप अभिषेका वेद विदित कही सकल विधाना कहे उरचहु पुर विविध बिताना सफल रसाल पूग फल केरा रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा रचहु मंजुमनि चौके चारू कहु बनावन बेगी बजारू पूजहु गणपति गुरकुल देवा सब विधि करहु भूमि सुर सेवा
अयोध्यापुरी में श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावे बजने लगे। अयोध्या के महल में श्री राम तथा सीता जी को अंग फड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या आगमन की सूचना का संकेत मानते हैं। रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पुराए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी। ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।
ध्वज पताक तोरण कलस सजहु तुरग रथ नाग सिर धरि मुनि बर बचन सब निज निज काज हिला जहि आय सुदीना सोते ही काजु प्रथम जनु कीना विप्र साधु सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सियतन सगुन जनाए, हर कहीं मंगल अंग सुहाए। कुल किस प्रेम परस पर कहि, भरत आगमनु सूचक अहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहै सगुन फलु दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन ही कमठरि दौ जेहि भांति। एहि अवसर मंगल परम, सुनि रहसे उर निवासु। शोभत लखि विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे उ बहोरी देन बलि भागा। जेहि विधि होइ राम कल्याणु, देहु दया करि सो बरदानु। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। राम राज अभिषेक सुनी, हिय हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायउ माथा। सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूजि सन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु तदपि उचित जनु बोली सप्रीति पठइय काजनाथ असिनीति। प्रभु तात जी प्रभु कीन सनेहु भयउ पुनीत आजु यहु गेहु आयसु होइ सो करौ गोसाई सेवकुलहै स्वामी सेवकाई।
श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकने के बाद राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से इस अवसर की शिक्षा विशेष देने के लिए श्री राम के महल में जाने का अनुरोध किया। मुनिवर को अपने महल में आया देखकर श्री राम ने विनीत भाव से उनके चरण छुए और कहा, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलकारी है, तथापि उचित तो ये था कि गुरुदेव ने दास को ही अपने पास बुला लिया होता। श्री राम के गुण शील तथा स्वभाव से पुलकित होकर मुनिराज ने उन्हें शुभ संवाद सुनाया कि अवध नरेश ने उनके राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुलगुरु ने उन्हें इस अवसर विशेष के विधि विधान तथा नियम संयम बताए, लेकिन श्री राम के मन में खेद इस बात का हुआ कि सभी भाई एक साथ जन्मे, खाया खेला, सबके यज्ञोपवीत विवाह आदि एक साथ संपन्न हुए, किंतु अब अन्य भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक ज्येष्ठ पुत्र यानी केवल उनका हो रहा है। इधर सभी अयोध्यावासी अपने ननिहाल से भरत के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि अग्रज के राज्याभिषेक के उत्सव में वो भी भाग ले सकें। उधर कुचक्री देवता इस शुभ कार्य में विघ्न डालने की योजनाएं बना रहे हैं। सरस्वती से देवताओं ने विनती की कि वे कुछ ऐसा करें जिससे श्री राम राज त्याग कर वन को चले जाएं।
सुनि सने हसाने वचन मुनि रघुबर ही प्रसन्न राम कसन तुम कहु अस हंस वंस अवतंस। राम गुण सीलु सुभाव बोले प्रेम पुलकि मुनि राम रूप सजेउ अभिषेक समाजु चाहत देन तुम्हि जुवराजु। राम करहु सब संजम आजु जो विधि कुशल निबाहे काजु गुरु सिख दे राय पही गयउ राम हृदय अस बिसमउ भयउ। जन्मे एक संग सब भाई भोजन शयन केली लरिकाई करण बेद उपबीत बिया संग संग सब भय उछा बिमल वंश यहु अनुचितेकु बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु प्रभु स प्रेम पछितानी सुहाई हरउ भगत मन के कुटिलाई अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सनमाने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद बाजही बाजन विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना भरत आगमन सकल मना वही आवहु बेग नयन फलु पावही हे हा हाट बाट घर गली अथाई कहीं परस पर लोग लोगाई काली लगन बलि के तिक बारा पूजी विधि अभिलाषु हमारा हे हा कनक सिंहासन सीय समेता बैठ ही राम होई चित चेता सकल कहीं कब होई ही काली विघन मना वही देव कुचाली ए हाँ तिन्ही सोहाइन अवध बधावा चोरहि चंदिनी राति न भावा शारद बोली विनय सुर करहि बारहि बार पाय लय परहि विपति हमारी बिलो की बड़ी मातु करिय सोई आज राम जाहि बन राजु तजी होई सकल सुर काजु सुर बिनय ठाड़ी पछिताते भयु सरोज बिपिन तिमराते देख देव पुनि कहीं निहोरे मातु तो ही नहीं थोरी उखोरे विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ तुम जानहु सब राम प्रभा जीव करम बस सुख दुख भागी जाई अवध देव हित लागी बार बार गही चरण सकोची चली विचारी विबुध मति ओची ऊंच निवास नीच कर तूती देखी न सकहीं पराई विभूति आगिल काजू बिचारी बहोरी करी हहीं चाह कुशल कवि मोरी हर्ष हृदय दशरथपुर आई जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई
के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा। उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी का कारण पूछती है, किंतु वो चुप है। लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। कहीं उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है। कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा। हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहाँ से दूर परदेश में है और तुम यहाँ कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा। मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।
नाम मंथरा मंदमति चेरी कैकेयी केरी अजस पेटारी ताहि करी गई गिरा मति फेरी। दीख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा पूछे सी लोगन काहु छाहू राम तिलक सुनि भा उरदाहू करई विचारु कु बुद्धि कुचाती होई अकाजुक वन विधि राती देखि लागी मधु कुटिल किराती जिमी गवत कैले उनके ही भांति भरत मातु पही गई बिलखानी का अनमनि हसी कह हसी रानी उतरु देन ले उसासु नारी चरित करी ढारई आंसू हसी कह रानी गालू बड़ तोरे दीन लगन सिक अस मन मोरे तब हुन बोल चेरी बड़ी पापिनी छाड़ई स्वास कारी जनु सापिनी।
सभय रानी कह कह सिकिन कुशल राम मही पाल लखनु भरतुरी पुदमनु सुनी भाकुर
कुशल के ही आजो जे ही जनेसु दे जुब राजु भयो कौशल ही विधि अति दाहिन देखत गर्भ रहतोर नाहिन देख हु कसन जाई सब शोभा अब लो की मोर मनु छोभा पूत विदेशन सोच तुम्हारे जानते हो बस ना हो हमारे नींद बहुत प्रिय सेज तुराई लख हुन भूप कपट चतुराई सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी झुकी रानी अमर हर गानी पुनिय सका बहु कहस घर भोरे तब धर जीप करावो तोरी चाली जानी तिय विशेषी पुनिचेरी कही भरत मातु मुस्कानी तो ही सपने हूँ तो पर को पुनमोही सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहा पुर जे ही दिन होई स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई राम तिलक जा साचे हूँ काली देऊ मागु मन भावत आली सम सब महतारी राम ही सहज सुभाय पियारी मो पर कर ही सने हूँ बिसेखी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी जो विधि जन्म दे करी छोहू हो हूँ राम सिया पुत पुतोहू प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिन्ह के तिलक छोहू कस तोरे
इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने उसके लिए क्या अंतर पड़ता है, वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूं, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।
भरत शपथ तो ही सत्य कहो, परिहरी कपट दुरा, हर्ष समय विस्मऊ करसी, कारण मोहि सुनाओ। सब पूजी अब कछु कहब जीभ कर दूजी, हो रहे जोग कपारु अभागा, भले उ कहत दुख रउ रही लागा, कह ही झूठी बुरी बात बनाई, ते प्रिय तुह ही करुई मैं माई, हम हु कहबी अब ठकुर सुहाती, ना हित मौन रहब दिल राती। करि कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सो ढुनिय लही अजो दीन्हा, को नृप हो हम ही का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। चारे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा, ताते कछु का बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। कपट प्रिय बचन सुनी, तीय अधर बुधि रानी, सुर माया बस बैरिनी, सुरहित जानी पतियानी। पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जन मोही, तसिमति फिरी अहै जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु भाभी। तुम पूछहु मैं कहत डिराऊ, धरहु मोर घर पोरी नाऊ, सज प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। सिए राम कहा तुम रानी राम ही तुम प्रिय सो पूरी बानी रहा प्रथम अब दे दिन बीते सम फिरे रिपु हो ही प्री दे भानु कमल कुल पोषणी हारा बिनु जल जार करई सोई छारा जरी तुम्हारी चह समती उखारी रुंध हुकरी उपाऊ बरबारी तुम ही न सोचो सुहाग बल निज बस जान हुरा राउर सरल सुभा चतुर गंभीर राम महतारी बीच पाई निज बात संवारी पठे भरत भूप ननियौरे राम मा तुमत जान बरौरे वही सकल सवती मोहिनी के गर्भित भरत मातु बल पी के साल तुम्हार कौशल ही माई कपट चतुर नहीं होई जनाई राज ही तुम पर प्रेम भी सीखी सवती सुभाऊ प्रपंच भूप ही अपनाई राम तिलक हित लगन धराई यह कुल उचित राम कहूं टीका सब ही सुहाई मोहि सुठिनी का आगिली बात समुझ डरु मोही देव देव फिर सोफल ओही
बड़ी चतुराई से मंथरानी रानी कैकेयी के मन में कौशल्या तथा राम के प्रति ऐसे विष का बीज डाल दिया जिसके प्रभाव में सूर्यकुल के सुख समृद्धि हर्ष और उल्लास सबको एक बारगी सुखा डालने की क्षमता थी। सौत की ईर्ष्या की सैकड़ों उल्टी सीधी मन गणंत कहानियां सुनाकर मंथरा ने कैकेयी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। कहती है, हे रानी, अपना मित्र या शत्रु तो पशु भी पहचान लेते हैं, परंतु तुम्हें तो अपने हित अहित की पहचान नहीं है। एक पखवाड़े से राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, और तुम्हें इसकी सूचना आज मुझसे मिली है। हे स्वामिनी, अब तुम्हारी स्थिति वही होगी जो दूध में पड़ी मक्खी की होती है। यदि पुत्र सहित राजा की चाकरी करोगी तब तो यहां रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा। अपने अनिश्चित भविष्य की आशंका से रानी कैकेयी कांप जाती है। अब उन्हें ये भान होता है कि पिछले कई दिनों से उनकी दाहिनी आंख फड़कती रही है और रातों को बुरे बुरे सपने आते रहे हैं। वो मन में ठान लेती हैं कि मायके जाकर शेष जीवन बिता देंगी, किंतु जीते जी सौत की चाकरी नहीं करेंगी।
रची पची कोटि का कुटिल पना कीन्हे सी कपट प्रबोध कही सी कथा सत सवती कै जेही विधि बाढ़ विरोध । प्रतीति उर आई पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई
का पूछो तुम बहु न जाना निज हिता नहित पशु पहचाना भय हो पाप दिन सजत समाजू तुम पाई सुधि मोहिसन आजू खाइय पहिरिया राज तुम्हारे सत्य कही नहीं दोष हमारे भामिनी भय हु दूध कई माखी जो सुत सहित करहु सेवकाई ताव भर रहु नान उपाई
ही कौशिला देव भरतु बंदी गृह से हही लखनु राम के ने
कय सुता सुनत कटु बानी कही न सकई कछु सहमी सुखानी तन पसेव कदली जिमी कापी कुबरी दसन जीभ तब चापी कही कही कोटिक कपट कहानी धीरजु धरहु प्रबोधि सिरानी फिरा करमु प्रिय लागी कुचाली बकी ही सराहली मानी मराली
सुनु मन सुध सुभाओ दाहिन बाम न जानम काऊ अपनी चलत नाजु लगी अनभल का हुक कीन कहिया खई कही बार मोही दैया तुसह दुख दीन नैहर जन्म भरब बरु जाई जियत न करबी सवती सेवकाई हरि बस दैयु जियावत जाही मरनु नीक ते ही जीवन चाही
दीन बचन कह बहु विधि रानी सुनी कुबरी तिया माया ठानी
अस कस कहु मानी मन ऊना सुख सुहाग तुम कहो धीर दोना हेलो परिपाका जब ते को मत सुना मैं स्वामिनी भूखन बासर नींदन जामिनी पूछे उगुनहीन रेख तीन है खाची भरत भुआल हो ही यह साची भामिनी करहु तकहो पाओ है तुम्हारी सेवा बसराओ
रानी कैकेयी को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आई देख मंथरा ने शुभ संवाद सुनाया कि उसने ज्योतिषियों से पूछकर ये जान लिया है कि अंततो गत्वा भरत ही राजा होंगे किंतु उसके लिए रानी को कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी कैकेयी उपाय जानने को आतुर हो जाती हैं। कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कुएं में छलांग लगा सकती हूँ पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ यदि तू मेरे ऊपर आने वाले दुख के निवारण के उपाय बता सकती है तो मैं वो उपाय क्यों नहीं करूंगी। मंथरा अपने स्वामिनी को उन दो वरदानों का स्मरण दिलाती है जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में थे। अब समय आ गया है कि दोनों वरदान मांगकर वो अपनी छाती ठंडी कर लें। मांग लो अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास लेकिन ध्यान रखना राजा से जो मांगो वो देने के लिए जब सौगंध खा लें तभी मांगना अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। रानी कैकेयी मंथरा के वचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती हैं। कुबरी मंथरा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है। कहती हैं, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली बना लूं। ऐसा कह मंथरा द्वारा प्रेरित हो वो कोप भवन में चली जाती हैं।
त्यागी कहसी मोर दुख देखी बड़ कस न करब हित लागी
कुबरी कर कबूली कैके कपट छुरी उर पाहन टे लखई न रानी निकट दुख कैसे चरही हरि तति न बलि पशु जैसे सुनत बात मृदु अंत कठोरी देती मनहु मधुमाहुर घोरी
कहई चीर सुदियाहि कि नाही स्वामिनी कही हो कथा मोहि पाही जब करई तब मागे हुजे ही बचन न करई हुई अका जो आज निसी बीते बचन मोर प्रिय माने हुजीते
कुघातु करी पात किनी कहे सी कोप गृह जाहू
काजु सवारे हूँ सजग सब सहसा जनी पतिया हूं।
कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी बार बार बड़ी बुद्धि बखानी
तो ही समहित नामोर संसारा कहे जात कई भाई सी अधारा जो विधि पूरब मनोरथ काली करो तो ही चख पुतरियारी
बहु विधि चेरी ही आदरु दे कोप भवन गवनी कैके विपति बीजु बरसारि तु चेरी भुई भई कुमति कई कई केरी पाई कपट जलू अंकुर जामा बरदो दल दुख फल परिनामा कोप समाजु साजी सब सोई राजू करत निज कुमति बिगोई राउर नगर कोलाहलु होई यह कुचाली कछु जान न कोई। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहीं सुमंगल चार एक प्रभि सही एक निर्गमही धीर भूप दरबार सखा सुनी ही हर शाही
मिली दस पांच राम पही जाही प्रभु आन रही प्रेम पहचानी
पूछही कुशल खेम मृदु बानी भवन प्रिय आय सुपाई
करत परस पर राम बड़ाई को रघुबीर सरिस संसारा
सीलु सनेहु निबाह निहारा जेही जेही जोनी करम बस भ्रमही
तहाँ तहाँ ईसु देव यह हमाही सेवक हम स्वामी सिरनाहू
हो नात यह और निबाहू अभिलाषु नगर सब काहू
कै कै सुतारी दया अति दाहू कौन कुसंगति पाई न साई
रही न नीच मते चतुराई
श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है,
राजे जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थीं, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या, देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। ये सुनकर कैकई के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।
सांझ समय सानंद नृप गयउ कैकई गेह गवनु निठुरता निकट किया जनु धरि देह सने भवन सुनि सकुचे उराऊ भय बस अगहुड़ परई न पाऊ सुरपति बसई बाह बल जाके नरपति सकल रही रुख ताके सो सुनिति अरिस गयउ सुखाई देखहु काम प्रताप बड़ाई सूल कुलिस असि अंगव निहारे तेरति नाथ सुमन सर मारे सहयन रे सुप्रिया पही गयउ देखी दशा दुख दारुण भयउ भूमि शयन पटु मोट पुराण दिए डारी तन भूषण नान कुमति ही कसी कुबेशता भाभी अन अहिवा तु सूच जनु भाभी जाई निकट रिपु कह मृदु बानी प्राण प्रिया केही है तुरिसानी केही है तुरानी रिसानी पर सत पानी पति ही ने वारई मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई तुलसी नृपति भवत व्यता बस काम कौतुक लेखई बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोही सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर अनहित तोर प्रिया कीन्हा केही दुई सिर केही जम चहलीन्हा कहु केही रंग कही करो नरेसु कहु केही नृपही निकासों देसु सकूं तोर अरे अमर उमारी काह कीट बपुरे नर नारी जानसी मोर सुभाव बरोरू मनु तवानन चंद चकोरू प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहो कपटु करी तो ही भामिनी राम सपथ सत मोही बिहसी मागु मन भावती बाता भूषण सजही मनोहर गाता घरी कु घरी समुझी जिया देखू बेगी प्रिया परिहर ही कुबेकू सुनी मन गुनी सपथ बड़ी बिहसी उठी मति मंद भूषण सजती बिलोकी मृगु मन हूँ किरातिनी फन कहीं न भूप कपट चतुराई कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई यद्यपि नीति निपुण नर नाभु नारी चरित जलनिधि अवगा कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी बोली बिहसी नयन मुहु मोरी
अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया गया प्रसार भारती के सौजन्य से।